आज का चैप्टर थोड़ा एक्सट्रीम और वायलेंस से भरा है, तो जो 18 साल से कम है या जिन्हें मैच्योर कंटेंट नहीं पसंद, वो इस पार्ट को स्किप कर दें। आर्यांश के सामने एक बार फिर दीवा की चोरी पकड़ी गई थी। दीवा ने उसे समय के बारे में यही बताया था कि वो उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है, लेकिन आर्यांश को पता चल गया था समय कौन है। ऊपर से वो उसे दिन रात मैसेज भी करता था। दीवा का झूठ पकड़े जाने पर आर्यांश उसे जलती निगाहों से देख रहा था। उनकी इन निगाहों का मतलब दीवा बखूबी समझती थी। पिछली बार भी उसके झूठ बोलने पर उसे काफी कुछ भुगतना पड़ा था। दीवा ने थूक निगला और आर्यांश के सामने आकर कहा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दोगे? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दीवा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कहा हर शब्द उसी के खिलाफ काम कर रहा था। पिछली बार जब तुम सपनों में किसी समय को हेल्प के लिए बुला रही थी, तुम्हारी सपनों में यही प्यारा समय था ना? बोलते हुए आर्यांश ने प्यारा शब्द पर जोर दिया। दीवा मायूसी से उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से आर्यांश बात कर रहा था, उससे साफ था कि उसने पहले ही समय के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। ऐसे में दीवा की सफाई कोई काम नहीं आने वाली थी। ऊपर से उसने झूठ तक बोला था कि समय लड़का नहीं लड़की है। दीवा ने उसकी तरफ सूनी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें जो समझना है समझ लो। जब उसकी सफाई काम ही नहीं आने वाली थी, तो दीवा ने भी हार मान ली थी। अगर तुम्हें इसी तरह जिद करनी है, तो आई प्रॉमिस तुम्हारा वो समय कल सुबह का सूरज नहीं दिखेगा। आर्यांश ने गुस्से में पास में पड़ा वास नीचे पटकते हुए चिल्लाया। उसकी इस हरकत पर दीवा और घबरा गई थी। वो इस वक्त गर्दन झुकाए उस बच्चों की तरह खड़ी थी जिसने कोई गलती कर दी हो, और अब सजा से बचने का और कोई रास्ता नहीं था। दीवा ने नजरें उठाई और आर्यांश के पास आकर बोली, समझने की कोशिश करो। सच में मेरे और समय के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। दीवा ने आर्यांश से बचने के लिए उसे सब सच बताने का फैसला किया। आर्यांश ने उसकी तरफ देखकर कड़वाहट से कहा, ठीक है, फिर तुम ही बता दो, तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? दीवा जब आर्यांश को समझने के लिए उसके सामने आई, तो आर्यांश ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उसे इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो शेर के पंजे में जकड़ ली गई हो। दीवा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और बस अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो? आर्यांश ने भौहें उठाकर पूछा। हाँ, सिर्फ दोस्त ही है, दीवा ने अपनी सफाई में कहा। तो फिर पिछली बार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर सिर्फ दोस्त होता तो तुम्हें समय नाम के लड़के को लड़की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आर्यांश ने ठंडे स्वर में कहा। पहले भले ही आर्यांश को दीवा पर शक ना हो, लेकिन दीवा के झूठ बोलने पर उसे गुस्सा भी आ रहा था और उसे दीवा पर शक भी हो रहा था। क्योंकि मैं डर गई थी, तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लगता है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने तरीके से पता करवा सकते हो, दीवा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। दीवा अब सुबकने लगी थी। वो अपने रिश्तों को लेकर ईमानदार रहती थी। अगर उसे आर्यांश के साथ धोखा करना होता तो वो आराम से समय को अपनी तरफ इम्प्रेस कर सकती थी। वो वैसे भी उसे लाइक करता था। एक छोटी सी बात ने उनके झगड़े को बहुत बड़ा कर दिया था। दीवा को लगा उसने इस मामले में जाँच करने का कहा है तो आर्यांश शांत हो जाएगा, लेकिन तभी आर्यांश ने हंसते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम्हारे बारे में पता करने के लिए मैं अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं? तुम जैसी लड़की के पीछे वेस्ट करने के लिए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। आर्यांश के शब्द दीवा के दिल पर तीर से लगे। क्या वो उसे इतना घटिया समझता था जो वो किसी भी लड़के के पास ऐसे ही चली जाएगी? दीवा की आंखों में आंसू थे। उसने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूं जो लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाना जानती हूं? बिल्कुल सही कहा, मेरी नज़रों में तुम्हारी यही इज्जत है। तुम जैसे घटिया लड़कियां बस किसी अमीर और अच्छे आदमी को देखती नहीं और उसे अपने पीछे पागल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती हो, आर्यांश सर्द आवाज में बोला। दीवा की आंखों से आंसू बहते हुए गालों तक चले गए थे। तो उसके लिए आर्यांश की नज़रों में ये इज्जत थी? उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। वो घटिया नहीं थी, बल्कि घटिया आर्यांश था जिसने उसे गंदा किया। आर्यांश ने देखा दीवा अचानक अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी थी। वो बिना किसी भाव के वहीं पर खड़ा था। तभी दीवा ने उसके पास आकर आर्यांश के गाल पर एक कसकर थप्पड़ लगाया। उस एक थप्पड़ ने आर्यांश के घमंड को चूर चूर कर दिया था। वहीं कोने के पीछे से सुमन उनकी लड़ाई सुन रही थी। जब दीवा ने आर्यांश को थप्पड़ लगा दिया तो वो सन रह गई। इस लड़की में सच में बहुत हिम्मत थी।
दीवा उसकी आंखों में देखते हुए जोर से चिल्लाकर बोली, इससे अच्छा तो मैंने रक्षित का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता। कम से कम वो हर रोज मेरी इंसल्ट तो नहीं करता। उसके साथ रहना तुमसे हर रोज इंसल्ट होने से तो बेहतर है। तुम खुद को बहुत बड़ा इंसान समझते हो और सामने वाला छोटा है। अगर मैं इतनी ही घटिया हूं तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? दीवा ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। दीवा का ये थप्पड़ उसे कितना भारी पड़ने वाला था अभी उसका एहसास भी नहीं था। आर्यांश ने दीवा का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो उसका बस चले तो वो अभी उसे मोड़कर तोड़ दे। आर्यांश ने धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा, मेरा एक उसूल है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुमने ये जो मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बेहतर बना दूंगा दीवा गोयंका, और तुम जिंदगी भर पछताओगी कि तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है। दीवा के उस थप्पड़ ने आर्यांश को पागल कर दिया था। वैसे भी मेरी जिंदगी नर्क से बदतर ही है, तुम्हें बस मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और मुझे लेकर धमकियां देनी ही आती हैं, और तुम कुछ नहीं कर सकते आर्यांश कपूर, दीवा ने जवाब दिया। तो तुम्हें लगता है कि मैं बस कोरी धमकियां ही देता हूं? आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा। उसकी बात सुनकर दीवा एक पल के लिए कांप गई थी। ऐसा लगता था जैसे आर्यांश ने अब तक अपनी जो नफरत और गुस्से को दबाकर रखा था, दीवा के एक थप्पड़ ने उसे फिर से जगा दिया था। इस वक्त उसका ओरा देखकर दीवा की दिल की धड़कनें डर के मारे ट्रेन से भी तेज दौड़ रही थी। आर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, तुमने मुझे घटिया कहा ना, तो आज रात मैं साबित कर देता हूं कि घटिया लोग क्या करते हैं। तुम्हें उसे रक्षित के पास जाना था ना, चलो उसी के पास छोड़कर आता हूं तुम्हें, या उससे भी कुछ बदतर मिस गोयंका। उसकी बात सुनकर दीवा ने नामे सिर हिलाया, वो डरकर अपने कदम पीछे लेने लगी। दीवा ने घबराकर पूछा, तुम क्या करने का सोच रहे हो? दीवा के दिमाग में वो रात ताजा हो गई थी जब पिछली बार आर्यांश को उसके रक्षित से मिलने का सच पता चला था। वो रात दीवा की बहुत मुश्किल थी और आर्यांश ने उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाया था। तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना है ना, बस आज की रात तुम मेरी सारी बातें मानो और फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, आर्यांश ने जवाब दिया। दीवा को एक पल के लिए लगा कि एक आखिरी रात और उसे दर्द सहना होगा। तभी आर्यांश उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए ले जाने लगा। वो इतना गुस्से में था कि उसे दीवा के दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दीवा भी अब अपनी जिद पर आ गई थी, उसने एक शब्द तक नहीं बोला था। आर्यांश दीवा को लेकर पार्किंग एरिया में आया और उसने गाड़ी के अंदर धकेल दिया था। दीवा को लगा कि वो उसे बेडरूम में लेकर जाएगा, लेकिन यहां तो वो उसे कहीं और भी लेकर जा रहा था। तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? दीवा ने जल्दी से पूछा।
वहीं जहां तुम्हारी असली जगह है, और वही करना जिसे करने में तुम माहिर हो, आर्यांश ने जवाब दिया। उसके बाद आर्यांश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। दीवा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन डोर लॉक था। उसने आर्यांश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बाहर निकालो आर्यांश, डर लग रहा है। डर तो तब लगना चाहिए था जब मुझ पर हाथ उठाया था, अगर अब थोड़ा सा भी हिली तो चिड़ियाघर में ले जाकर शेर के आगे फेंक दूंगा, आर्यांश ने उसे धमकाते हुए कहा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसके बाद दीवा ने तीच नहीं कहा, वो चुपचाप बैठ गई। आर्यांश जितने गुस्से में था वो ऐसा कर भी सकता था। कुछ ही देर में वो दीवा को लेकर एक कसीनो में पहुंचा। दीवा वहां पर पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन उसने उस जगह के बारे में सुना था। वो बहुत बदनाम जगह थी, वहां अक्सर अंडरवर्ल्ड के लोग या गुंडे माफिया वगैरह जुआ खेलते थे और हर वो गलत काम करते थे जो खुले में कोई भी करने से शर्मा जाता था। वहां अक्सर लोग अपनी रातें रंगीन करने आते थे। वो जगह शराब, ड्रग्स और स्ट्रिपर्स के चलते बदनाम थी। अंदर आते ही उसने दीवा का हाथ पकड़ा और प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। आर्यांश जानता था कि उस जगह पर कैसे और क्या काम होते हैं। उसने एक कमरे के दरवाजे को लात मारकर खोला तो दीवा अंदर का नजारा देखकर सन रह गई थी। वहां एक लड़की तीन आदमियों के साथ थी। उनके कपड़े भी सही हालत में नहीं थे। दीवा ने उन्हें देखकर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो एक स्ट्रिपर क्लब था जहां अक्सर लोग कॉल गर्ल्स के साथ नाइट स्पेंड करते थे। आर्यांश के वहां आते ही वो तीनों आदमी खड़े हो गए और उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने इशारे से उस लड़की को जाने को कहा। दीवा ने उन सब की शक्ल देखी तो उसे याद आया कि ये गुंडे थोड़े टाइम पहले ही जेल से छूटे थे। न्यूज आर्टिकल में उनकी फोटो थी, वो एक बड़ी गैंग से ताल्लुक रखते थे। दीवा को समझ नहीं आया कि वो आर्यांश का इतना सम्मान क्यों कर रहे थे और आर्यांश उसे यहां क्यों लेकर आया था। दीवा ने आर्यांश की तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन आर्यांश तो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। उनमें से एक आदमी आगे आया और अपना सर झुकाकर बोला, बोलिए सर क्या करना है? कॉल कर देते, यहां आने की जहमत क्यों उठाई? क्योंकि काम यहां आने पर ही होने वाला था। आज रात के लिए ये लड़की तुम्हारी और फिर ये हमेशा के लिए मेरे हर एहसान से आजाद हो जाएगी। थोड़ा प्यार से हाँ, बहुत नाजुक है, बाकी ये खुद इन कामों में बहुत माहिर है, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा। दीवा ने कभी नहीं सोचा था कि अपने गुस्से में आर्यांश इस हद तक गिर जाएगा। वो जोर से चिल्लाकर बोली, पागल हो गए हो तुम, ये क्या कर रहे हो? हालांकि आर्यांश ने उन्हें इशारे से शांत रहने को कहा था, लेकिन दीवा ने देखा नहीं था। उसे दीवा को वहां छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उसे डराने की नीयत से उसे वहां लेकर आया था। दीवा इस बात से अनजान थी कि अगर आर्यांश के सामने उनमें से किसी एक ने गलती से दीवा को नाखून भी लगा दिया होता तो वो अपने हाथों से उनकी जान ले लेता। आर्यांश वहां से जाने लगा तभी दीवा उसके पीछे आई। तुम मुझे यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो, दीवा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा। आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो भौहें उठाकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें तुम्हारे साथ वो सब करते हुए देखूं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तुम्हें देखना नया नहीं है, पर हाँ तुम कंफर्टेबल नहीं हो पाओगी, फिर भी तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो रुक जाता हूँ। आर्यांश जानबूझकर वहीं पर रुक गया, वो दीवा को अकेले छोड़कर जा भी कैसे सकता था। आर्यांश ने उनके एक आदमी की तरफ इशारा किया तो वो दीवा की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। दीवा ने एक नज़र उनकी तरफ गुस्से से देखा, वो मर जाना पसंद करेगी लेकिन उनमें से किसी के साथ इस कमरे में नहीं रुकने वाली थी। दीवा ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन आर्यांश सामने आकर खड़ा हो गया था। तुम मुझे पल पल मार रहे थे लेकिन आज तुमने एक झटके में मुझे खत्म कर दिया आर्यांश कपूर, दीवा ने आर्यांश की आंखों में देखते हुए नफरत से कहा। अचानक उसकी नज़र वहां रखी शराब की बोतल पर गई। दीवा उसकी तरफ बढ़ने लगी, बोतल खाली थी, वो सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी दीवा ने बोतल को दीवार के दे मारा, बेवकूफ लड़की, एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से लड़ने की बेवकूफी कर रही है, आर्यांश ने सार्कास्टिकली सर हिलाकर धीरे से कहा। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। ओके, आज का चैप्टर थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था, आई नो आर्यांश ने बहुत गलत किया, वो भी सिर्फ दीवा को डराने के लिए, लेकिन उसकी गलती कहीं उस पर भारी न पड़ जाए।